नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। एन एलिगेंट पजल विल लार्सन की इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पर केंद्रित गैर कथा पुस्तक है। इसका विषय सामान्य प्रबंधकीय सलाह नहीं बल्कि तेजी से बढ़ती सॉफ्टवेयर संस्थाओं में उभरने वाली जटिल परिचालन समस्याएं हैं। लार्सन ने डिग, उबर और स्ट्राइप जैसे प्रौद्योगिकी परिवेशों के अनुभव के आधार पर संगठनात्मक डिजाइन, टीम का आकार, भर्ती, तकनीकी ऋण, कार्य निष्पादन और उत्तराधिकार जैसे विषयों के लिए विचार ढांचे प्रस्तुत किए हैं। पुस्तक का केंद्रीय प्रस्ताव है कि इंजीनियरिंग नेतृत्व को अलग अलग लोगों की समस्याओं की सूची मानने के बजाय परस्पर जुड़े तंत्र के रूप में समझना चाहिए। किसी टीम की गति, उसकी संरचना, निर्णय अधिकार, पदोन्नति प्रक्रिया और तकनीकी प्राथमिकताएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसलिए प्रबंधक को तत्काल लक्षणों पर प्रतिक्रिया देने के साथ मूल कारणों और दीर्घकालिक परिणामों को भी देखना चाहिए। यह पुस्तक प्रायः स्वतंत्र निबंधों और व्यावहारिक उपकरणों की संदर्भ पुस्तक जैसी लगती है। इसका उद्देश्य तैयार नुस्खे देना नहीं बल्कि कठिन प्रबंधकीय निर्णयों को स्पष्ट सिद्धांतों, सीमाओं और समझौतों के आधार पर लेने की क्षमता विकसित करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सिस्टम्स लेंस से प्रबंधन को परस्पर जुड़े निर्णयों के रूप में देखना पुस्तक की विशिष्टता उसका सिस्टम्स लेंस है। लार्सन के अनुसार इंजीनियरिंग संगठन में कोई भी प्रमुख समस्या अकेली नहीं होती। उदाहरण के लिए, लगातार डिलीवरी में देरी केवल किसी व्यक्ति की उत्पादकता का प्रश्न नहीं हो सकती। उसके पीछे टीम का अत्यधिक आकार, अस्पष्ट स्वामित्व, बहुत अधिक निर्भरताएं, अधूरी योजना, तकनीकी ऋण या निर्णयों की धीमी प्रक्रिया हो सकती है। इस दृष्टि से प्रबंधक का काम केवल लोगों को अधिक मेहनत करने के लिए कहना नहीं बल्कि उस व्यवस्था की जांच करना है जो अपेक्षित परिणाम को कठिन बना रही है। यह सोच संगठनात्मक बदलाव को भी अधिक सावधान बनाती है। पुनर्गठन करने से रिपोर्टिंग रेखाएं बदल सकती हैं, पर यदि कार्य सीमाएं और निर्णय अधिकार स्पष्ट नहीं है तो वही समन्वय समस्या नए रूप में लौट सकती है। सिस्टम्स लेंस प्रबंधक को प्रभावों की श्रृंखला देखने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा परिवर्तन किस व्यवहार को प्रोत्साहित करेगा, किस टीम पर अतिरिक्त बोझ डालेगा और सफलता को किस संकेतक से परखा जाएगा। यह दृष्टिकोण मानवीय पक्ष को कम नहीं करता, उल्टे यह स्वीकार करता है कि लोग उन प्रोत्साहनों, प्रक्रियाओं और सीमाओं के भीतर काम करते हैं जो संगठन बनाता है। अतः निष्पक्ष और प्रभावी नेतृत्व के लिए व्यक्ति और व्यवस्था दोनों का साथ में विश्लेषण आवश्यक है। दूसरा, विकास के साथ टीम आकार, संरचना और स्वामित्व का पुनर्रचना। तेजी से बढ़ती इंजीनियरिंग संस्था में संरचना स्थिर नहीं रह सकती। पुस्तक टीम के आकार और संगठनात्मक डिजाइन को उस काम की प्रकृति, समन्वय की लागत और प्रबंधकीय क्षमता से जोड़ती है। छोटी टीमों में अनौपचारिक संवाद पर्याप्त हो सकता है, लेकिन लोगों और सेवाओं की संख्या बढ़ने पर वही अनौपचारिकता भ्रम पैदा कर सकती है। कौन किस प्रणाली का मालिक है, प्राथमिकता कौन तय करेगा और साझा प्लेटफॉर्म का रखरखाव किसकी जिम्मेदारी है, ऐसे प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए। लार्सन का दृष्टिकोण किसी एक सार्वभौमिक संगठन चार्ट को आदर्श नहीं मानता। अलग उत्पाद, अलग तकनीकी वास्तुकला और अलग विकास अवस्था अलग संरचनाएं मांग सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि संरचना उस समस्या के अनुकूल हो जिसे संस्था हल कर रही है। पुनर्गठन को केवल पदों या रिपोर्टिंग का बदलाव समझना जोखिमपूर्ण है। यदि उसके उद्देश्य, जिम्मेदारियां और परिवर्तन के बाद की कार्य पद्धति स्पष्ट नहीं हो तो कर्मचारियों के लिए अनिश्चितता बढ़ती है और निष्पादन कमजोर हो सकता है। पुस्तक उत्तराधिकार योजना के महत्व पर भी ध्यान देती है। किसी महत्वपूर्ण भूमिका का ज्ञान और निर्णय केवल एक व्यक्ति तक सीमित रहने पर संगठन नाजुक बनता है। जिम्मेदारियों का वितरण, संभावित नेताओं का विकास और संक्रमण की तैयारी वृद्धि को अधिक टिकाऊ बनाते हैं। तीसरा, तकनीकी ऋण और माइग्रेशन को क्षमता आवंटन की समस्या मानना। इंजीनियरिंग नेतृत्व की कठिनाइयों में तकनीकी ऋण और अंतहीन माइग्रेशन विशेष स्थान रखते हैं। पुस्तक इन्हें केवल तकनीकी सफाई के काम के रूप में नहीं देखती, ये क्षमता, जोखिम और व्यावसायिक प्राथमिकता के प्रश्न हैं। जब पुरानी प्रणालियां विकास को धीमा करती हैं, विश्वसनीयता घटाती हैं या नए उत्पाद कार्य को असामान्य रूप से महंगा बनाती हैं, तब उन्हें अनदेखा करना भविष्य की गति के विरुद्ध निर्णय बन सकता है। दूसरी ओर, हर सुधार कार्य को तत्काल सर्वोच्च प्राथमिकता देना भी उचित नहीं है। प्रबंधक को स्पष्ट करना होता है कि समस्या का वर्तमान प्रभाव क्या है, विलंब का जोखिम कितना है, काम की सीमा क्या है और सफलता का ठोस प्रमाण क्या होगा। माइग्रेशन विशेष रूप से इसलिए कठिन है कि वे अक्सर लंबे समय तक चलते हैं, उपयोगकर्ता को सीधे नया लाभ नहीं दिखाते और बीच में नई प्राथमिकताएं आ सकती हैं। इसलिए उनका संचालन चरणों, स्पष्ट स्वामित्व और नियमित प्रगति जांच के साथ होना चाहिए। पुस्तक का व्यापक संकेत यह है कि तकनीकी निवेश को उत्पाद निवेश के विरोधी खांचे में नहीं रखना चाहिए। स्वस्थ इंजीनियरिंग व्यवस्था में विश्वसनीयता, रखरखाव और भविष्य की डिलीवरी क्षमता सभी उत्पाद की वास्तविक क्षमता का हिस्सा है। प्रबंधक की भूमिका इस संबंध को नेतृत्व और साझेदार टीमों के सामने समझने योग्य बनाना है। चौथा, भर्ती। कार्य निष्पादन और करियर ढांचे से न्यायसंगत संगठन बनाना। पुस्तक संस्कृति और करियर को केवल कर्मचारी संतुष्टि के विषय नहीं मानती, बल्कि संगठन की निष्पादन क्षमता से जोड़ती है। भर्ती में लक्ष्य केवल रिक्त पद भरना नहीं है, संस्था को यह समझना चाहिए कि उसे किस प्रकार की क्षमता चाहिए। साक्षात्कार प्रक्रिया किन संकेतों को विश्वसनीय ढंग से माप सकती है और निर्णय में असंगति या पक्षपात कहां प्रवेश कर सकता है। इसी प्रकार कार्य निष्पादन प्रबंधन का उद्देश्य केवल कमजोर प्रदर्शन पहचानना नहीं, बल्कि अपेक्षाओं, प्रतिक्रिया और विकास के बीच स्पष्ट संबंध बनाना है। करियर ढांचे उपयोगी होते हैं क्योंकि वे कर्मचारियों को बताते हैं कि अलग स्तरों पर प्रभाव, दायित्व और अपेक्षित व्यवहार कैसे बदलते हैं। लेकिन कोई ढांचा तभी विश्वसनीय बनता है जब प्रबंधक उसे नियमित बातचीत, काम के प्रमाण और सुसंगत निर्णयों से लागू करें। पुस्तक में प्रबंधक के लिए ऊपर, नीचे और पार्श्व दिशा में काम करने की आवश्यकता भी निहित है। केवल अपनी टीम की इच्छा को आगे बढ़ाना पर्याप्त नहीं, क्योंकि संसाधन और प्राथमिकताएं पूरे संगठन में साझा होती हैं। वहीं केवल वरिष्ठ नेतृत्व की मांग दोहराना भी प्रबंधन नहीं है। प्रबंधक को टीम की वास्तविक बाधाओं को स्पष्ट रूप से ऊपर पहुंचाना और व्यापक संदर्भ को टीम तक ईमानदारी से लाना होता है। यही संतुलन विश्वास और जवाबदेही दोनों को मजबूत करता है। अंत में सिद्धांतों के साथ स्थानीय संदर्भ और मानवीय निर्णय की आवश्यकता। एनएल एलिगेंट पजल का एक महत्वपूर्ण पाठ यह है कि प्रबंधन ढांचे निर्णय की जगह नहीं लेते, वे निर्णय को अधिक स्पष्ट, सुसंगत और जांचने योग्य बनाते हैं। किसी संस्था में प्रभावी टीम आकार, पदोन्नति प्रक्रिया या योजना चक्र दूसरी संस्था में वैसा परिणाम नहीं देगा, क्योंकि उत्पाद की अवस्था, बाजार का दबाव, तकनीकी जटिलता और उपलब्ध नेतृत्व अलग होते हैं। इसलिए लार्सन के उपकरणों को नियम पुस्तिका की तरह लागू करने के बजाय विचार शुरू करने के बिंदु की तरह पढ़ना बेहतर है। प्रबंधक को पहले समस्या की सीमा तय करनी चाहिए, संबंधित पक्षों की पहचान करनी चाहिए, उपलब्ध संकेतों और बाधाओं को समझना चाहिए, फिर ऐसा प्रयोग चुनना चाहिए जिसकी समीक्षा संभव हो। यह तरीका विशेष रूप से लोगों से जुड़े निर्णयों में उपयोगी है, जहां केवल आंकड़े पर्याप्त नहीं होते, मनोबल, भरोसा, भूमिका की स्पष्टता और सुरक्षा की भावना जैसे तत्व सीधे मापना कठिन हो सकते हैं, फिर भी वे टीम के व्यवहार और परिणामों को प्रभावित करते हैं। पुस्तक संरचित सिद्धांतों और मानव केंद्रित सोच के संतुलन पर बल देती है। इसका अर्थ है कि निष्पक्ष प्रक्रिया आवश्यक है, पर व्यक्ति की परिस्थिति और संगठनात्मक इतिहास को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसीलिए अच्छे प्रबंधकीय निर्णय कठोरता और सहानुभूति दोनों की मांग करते हैं। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन इंजीनियरिंग प्रबंधकों, तकनीकी लीडों और संस्थापकों के लिए सबसे उपयोगी है जो बुनियादी प्रबंधन व्यवहारों से आगे बढ़कर संगठन के विस्तार की वास्तविक समस्याओं को समझना चाहते हैं। विशेष रूप से वे पाठक इससे लाभ पाएंगे जिनकी टीमों में भर्ती बढ़ रही है, कई उत्पाद या प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, स्वामित्व धुंधला हो रहा है, या तकनीकी ऋण और निष्पादन गति के बीच लगातार तनाव है। नए प्रबंधक इसे हर परिस्थिति का क्रमबद्ध परिचय नहीं पाएंगे, क्योंकि पुस्तक सामान्य एक से एक बैठक, प्रतिक्रिया या टीम निर्माण की लंबी भूमिका पर केंद्रित नहीं है। इसके बजाय यह उन कठिन प्रश्नों से आरंभ करती है जो बुनियादी प्रबंधकीय अभ्यास स्थापित होने के बाद अधिक तीखे होते हैं। यही इसकी समान श्रेणी की कई पुस्तकों से अलग पहचान है। यह प्रेरक नेतृत्व सिद्धांतों या एकमात्र आदर्श संस्कृति का दावा नहीं करती। इसके स्थान पर यह संगठन को बदलते घटकों वाले तंत्र की तरह देखती है और टीम संरचना, करियर प्रणालियों, तकनीकी निवेश तथा उत्तराधिकार के बीच संबंध दिखाती है। पाठक को इससे सीधे लागू किए जा सकने वाले विचार ढांचे, समस्या को परिभाषित करने की बेहतर भाषा और निर्णयों के अनपेक्षित प्रभावों को पहचानने की आदत मिल सकती है। इसकी निबंधात्मक संरचना के कारण इसे क्रम से पढ़ने के बजाय किसी वर्तमान चुनौती के समय संदर्भ के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर भी पाठक को सुझावों को अपनी संस्था के संदर्भ, लोगों और सीमाओं के अनुसार परखना चाहिए। पुस्तक का स्थायी योगदान तैयार उत्तर नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग प्रबंधन की जटिलता पर अधिक व्यवस्थित और मानवीय ढंग से विचार करने का अभ्यास है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं विल लार्सन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।